ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण मूल वाल्मीकि रामायण भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे हैं और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे हैं। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कट रहेगा। इससे ऊंचे सद ग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती, तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए, तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी, हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्मपद है उसको जब प्राप्त होगा तब जानेगा कि मैं मुक्त हूं। तेरा स्वरूप तो केवल आत्मरूप है, उस पद में स्थित हूं। वह जन्मा नित्य चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है, उसी के प्रमाद से दुख होता है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने बनाते हैं और हाथी घोड़ा आदि उनके नाम कल्पित कर अभिमान करते हैं कि ये मेरे हैं और उनका नाश होने से दुखी होते हैं, वैसे ही बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं और उनका नाश होने से दुखी होता है। यह नहीं जानता कि सत का नाश नहीं होता, असत का नाश होने से सत का नाश मान बैठता है। जैसे घट का नाश होने से घटाकाश का नाश मानिए, वैसे ही मूर्खता से दुख पाता है। हे राजन, तू अपनी आत्मा जान। आत्माधिक संज्ञा की शास्त्रों ने उपदेश के लिए कल्पित कल्पना की है, नहीं तो आत्मा अनिर्वचनीय पद है, उसमें वाणी की गति नहीं। पर इन्हीं से जाना जाता है, क्योंकि मन और वाणी से भी आत्मसत्ता है, उसी से आत्माधिक संज्ञा सिद्ध होती है। जैसे जितने स्वप्न के पदार्थ है उनमें अनुभव सत्ता है, उससे वे पदार्थ सिद्ध होते हैं, वैसे जितनी कुछ अर्थ संज्ञाएं है वे सब आत्मा से सिद्ध होती है। ऐसा जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो, जिससे जरा मृत्यु आदि दुख तेरे नष्ट हो जाए। हे राजन, जैसे कुसवारी कीड़ा आप ही गुफा बनाकर और आप ही उसको बंद कर फंसता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही दुख पाता है। पर जब संकल्प को अंतर्मुख करता है तब मुक्त होता है और अपने को मुक्त ही मानता है। इससे हे राजन, संकल्प को त्याग कर आत्मा की भावना कर जिसमें तू सुखी हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब राजा विपश्चित समुद्र के पार जा पहुंचा तब उसके साथ जो मंत्री पहुंचे थे उन्होंने राजा को सब स्थान दिखाए, जो बड़े गंभीर थे, बड़े गंभीर समुद्र जो पृथ्वी को चहुफेर घेरे थे वे भी दिखाए, और बड़े बड़े तमाल वृक्ष, बावलिया पर्वतों के कंदरा, तालाब और नाना प्रकार के स्थान दिखाए। ऐसे स्थान राजा को मंत्री ने दिखाकर कहा, हे राजन, तीन पदार्थ बड़े अनर्थ और परम सार के कारण है। एक तो लक्ष्मी, दूसरा आरोग्य और तीसरा यौवन अवस्था। जो पापी जीव है वे लक्ष्मी को पाप में लगाते हैं, देह के आरोग्य से विषयों का सेवन करते हैं और यौवन अवस्था में भी सुकृत नहीं करते, पाप ही करते हैं। और जो पुण्यवान है वे इन्हें मोक्ष में लगाते हैं, अर्थात लक्ष्मी से यज्ञ आदि शुभ कर्म और आरोग्य से परमार्थ साधते हैं और यौवन अवस्था में भी शुभ कर्म करते हैं, पाप नहीं करते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे समुद्र और पर्वत के किसी स्थान में रत्न और किसी स्थान में घोंघे होते हैं, वैसे ही संसार समुद्र में कहीं रत्नों किनाई ज्ञानवान होते हैं और कहीं अज्ञानी रूपी घोंघे होते हैं। हे राजन, यह समुद्र माने जीवन मुक्त है, क्योंकि जल से भी मर्यादा नहीं छोड़ता और राग द्वेष से रहित है। किसी स्थान में दैत्य रहते हैं, कहीं पंखों से युक्त पर्वत, कहीं बड़वाग्नि और कहीं रत्न है, परंतु समुद्र को न किसी स्थान में राग है न द्वेष। जैसे ज्ञानवान को किसी में राग द्वेष नहीं होता, परंतु सब में ज्ञानवान कोई बिरला ही होता है। जैसे जिस सीपी और बांस से मोती निकलते हैं वे बिरले ही होते हैं, वैसे ही तत्वदर्शी ज्ञानवान कोई बिरला होता है। हे रामचंद्र जी, यहां की संपूर्ण रचना देखो कि कैसे पर्वत है, जिनके किसी स्थान में पक्षी रहते हैं, किसी स्थान में विद्याधर रहते हैं, कहीं देवियां विलास करती है, कहीं योगी रहते हैं, कहीं ऋषिश्वर मुनीश्वर, कहीं ब्रह्मचारी वैराग्य आदि पुरुष रहते हैं। यह द्वीप है और सात समुद्र है जिनके बड़े तरंग उछलते हैं और पर्वत का कौतुक आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ऋषि मुनि आदि देखो, और देखो कि सबको आकाश स्थान दे रहा है, पर महापुरुष किनाई आप सदा संग रहता है। वह शुभ अशुभ दोनों के लिए समान है, स्वर्ग आदि शुभ स्थान है और चांडाल पापी आदि के निवास स्थान नरक अपवित्र है, परंतु आकाश दोनों के लिए समान है, असंग होने के कारण निर्विकार है। जैसे ज्ञानी का मन सब स्थानों से निर्लेप होता है, वैसे ही आकाश सब पदार्थों से असंग न्यारा है और महात्मा पुरुष किनाई सर्वव्यापी है। हे आकाश, तू प्रकाश रूप है, तुझमें अंधकार दिखता है यह आश्चर्य है। हे आकाश, तू सबका आधार है, जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूर्ख है। दिन को तो तुझमें श्वेतता भासित होती है, रात्रि को अंधकार भासित होता है और संध्या काल में तुझमें लाली चमकती है, पर तू तीनों से न्यारा है। ये तीनों राजसी, तामसी और सात्विक की गुण है, पर तू इनके होते भी असंग है। हे आकाश, तू निर्मल है और तम तुझ में दिखता है, परंतु तू सदा ज्यों का त्यों है, यह अनित्य रूप है। चंद्रमा तुझ में शीतलता करता है, सूर्य दाहक है, तीर्थ आदि पवित्र स्थान है और पाप में अपवित्र स्थान है, परंतु तू सब में एक समान ज्यों का त्यों रहता है। वृक्षों को बढ़ने और ऊंचे होने की सत्ता तू ही देता है, अपनी महिमा को तू आप ही जाने और कोई तेरी महिमा जान नहीं सकता। तू निष्किंचन अद्वैत है, सबको धारण कर रहा है, सबका प्रयोजन तुझसे ही सिद्ध होता है। जल नीचे को जाता है पर तू सबसे ऊंचा और व्यापक विभू है। अनेक पदार्थ तुझ में उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं पर तू सदा ज्यों का त्यों है। जैसे अग्नि से चिंगारी उपजती और अग्नि ही में लीन हो जाती है, वैसे ही तुझ में अनंत जगत उपजते और लीन होते हैं और तू सदा ज्यों का त्यों है। जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूढ़ है। हे राजन, ऐसा आकाश कौन है यह भी सुनो। ऐसा आकाश आत्मा है जो चैतन्य आकाश है और जिसमें अनंत जगत उत्पन्न और लीन हो जाते हैं। उसको जो शून्य कहते हैं वे महामूर्ख है। जो सबका अधिष्ठान है, सबको धारण कर रहा है और सदा निसंग है, ऐसे चिदाकाश को नमस्कार है। हे राजन, यह आश्चर्य है कि वह सदा एक रस है पर उसमें नाना तरंग भासित होते हैं, यही माया है। हे राजन, एक विद्याधरी और विद्याधर थे। उनके मंदिर में एक ऋषि आ पहुंचा पर उस विद्याधर ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। इसे ऋषिश्वर ने शाप दिया कि तू 12 वर्ष तक वृक्ष होगा। निदान वह विद्याधर वृक्ष हो गया। पर अब हम आए हैं, हमारे देखते ही वह शाप से मुक्त हो वृक्ष भाव को त्याग कर फिर विद्याधर हुआ है। यह ईश्वर की माया है कि कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है। हे मेघ, तू धन्य है, तेरी चेष्टा भी सुंदर है, तीर्थों में सदा तेरी स्थिति है। तू सबसे ऊंचे विराजता है और सब आचार तेरा भला दिखता है, परंतु तुझ में नीचता है कि ओले की वर्षा करता है, जिससे खेती नष्ट हो जाती है और फिर नहीं उगती। वैसे ही अज्ञानी की चेष्टा देखने भर को सुंदर है और हृदय मूर्ख है, उनकी संगति बुरी है। ज्ञानवान की चेष्टा देखने में भली नहीं तो भी उनकी संगति कल्याण करती है। हे राजन, सबसे नीच कुत्ता है, क्योंकि जो कोई उसके निकट आता है उसे काट लेता है। वह घर घर में भटकता फिरता और मलिन स्थानों में जाता है। वैसे ही अज्ञानी जीव श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करता है पर मन में तृष्णा रखता है और विषय रूपी मलिन स्थानों में गिरता है। वह मूर्ख मनुष्य मानो कुत्ता है, बल्कि कुत्ते से भी नीच है। ब्रह्मा ने संपूर्ण जगत रचा है परंतु उसमें कुत्ता सबसे नीच है। पर कुत्ता क्या समझता है वो भी सुनो। एक पुरुष ने कुत्ते से प्रश्न किया कि हे कुत्ते, तुझसे कोई नीच है या नहीं? तब कुत्ते ने कहा कि मुझसे भी नीच मूर्ख मनुष्य है, उससे मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि प्रथम तो मैं सुरमा हूं, दूसरे जिसका भोजन खाता हूं उसकी रक्षा करता हूं और उसके द्वारे बैठा रहता हूं। पर मूर्ख ये तीनों कार्य नहीं करते, इससे मैं उनसे श्रेष्ठ हूं। मूर्ख को देह अभिमान है, इससे वह कुत्ते से भी नीच है। हे राजन, परम अनर्थ का कारण देह अभिमान है। देह अभिमान से जीव परम आपदा को प्राप्त होता है। वह मूर्ख नहीं मानो कौवा है जो सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर काम काम करता है। हे राजन, कमल की खान तालाब के निकट एक कौवा जहां निकला तो क्या देखा कि भौरे बैठे कमल की सुगंध लेते हैं। उनको देखकर वह हंसने लगा और काम काम शब्द करने लगा। तब उसको देख भौरे हंसे कि यह कमल की सुगंध क्या जाने। वैसे ही जिज्ञासु भौरे के समान है जो परमार्थ रूपी सुगंध लेते हैं। जो अज्ञानी रूपी कौवे हैं वे परमार्थ रूपी सुगंध को नहीं जानते। इस कारण मूर्ख को देखकर जिज्ञासु हंसते हैं जो आत्म रूपी सुगंध को नहीं जानता। अरे कौवे, तो क्यों हंस की बराबरी करता है? हंस तो मोती चुगने वाला है और तू नीच स्थानों में रहने वाला है। मंत्री ने कहा, हे कोयल, तुम कमल को देखकर क्या प्रसन्न होती हो? प्रसन्न तो तब हो जब वसंत ऋतु हो, पर यह तो वर्षा काल है, ये फूल ओलों से नष्ट हो जावेंगे। हे राजन, कोयल रूपी जो जिज्ञासु है उनको यह उपदेश है। हे जिज्ञासु, जो सुंदर पदार्थ तुमको दिखते हैं उनको देखकर तुम क्यों प्रसन्न होते हो? प्रसन्न तो तब हो जो ये सत्य हो, पर ये तो मिथ्या है और अविद्या के रचे हैं। तुम क्यों प्रसन्न होते हो? अपनी बिरादरी में जाकर बैठे हो और अज्ञानी का संग छोड़ दो। जैसे कौवा हंसों में जा बैठता है तो भी उसका चित्त गंदगी खाने में लगता है और हंस के आहार मोतियों की ओर देखता भी नहीं, वैसे ही अज्ञानी जीव कभी संतों की संगति में जा बैठता है तो भी उसका चित्त विषयों की ओर ही घूमता रहता है, स्थिर नहीं होता। जैसे कोयल का बच्चा कौवे को माता पिता जानकर उनमें जा बैठता है तब उसकी संगति से वह भी गंदगी खाने वाला हो जाता है। इससे कोयल उसको वर्जन करती है कि अरे बेटा, तू कौवे की संगति में मत बैठ, अपने कुल में बैठ, क्योंकि तेरा भी नीच आहार हो जाएगा। वैसे ही जिज्ञासु जो अज्ञानी का संग करता है तो उसके अनुसार उसको भी विषयों की तृष्णा उत्पन्न होती है। तब ज्ञानी उसको वर्जन करते हैं कि अरे जिज्ञासु, तू मूर्ख अज्ञानियों में मत बैठ, अपना कुल जो संतजन है उनमें बैठ। जैसे कोयल के बच्चे को कौवे सुख देने वाले नहीं होते, वैसे ही मूर्ख तुमको सुख देने वाले नहीं होंगे। मंत्री फिर कहने लगा, अरे चील, तू क्यों हंस की बराबरी करती है? तू तो बहुत ऊंचे उड़ती है, परंतु तुझमें हंस का कोई गुण नहीं है। जब तू मांस को पृथ्वी पर देखती है तब वहां गिर पड़ती है, पर हंस नहीं गिरते। वैसे ही जो मूर्ख है वे संतों की तरह ऊंचे कम काम भी करते हैं परंतु विषयों को देखकर गिरते हैं, पर संत नहीं गिरते। तो मूर्ख संतों की बराबरी कैसे करे? फिर मंत्री ने कहा, हे बगले, तू हंस की बराबरी क्या करता है? अपने पाखंड को छिपाकर तू अपने को हंस के नहीं उज्जवल दिखाता है, पर जब मछली निकलती है तब तू खा लेता है, यही तुझ में अवगुण है। हंस मानस सरोवर के मोती चुकने वाला है और तू गड्ढे में से तृष्णा करके मछली खाने वाला है। तू क्यों अपने को हंस मानता है? वैसे ही अज्ञानी जो विषयों की तृष्णा करते हैं और ज्ञानवान विवेक से तृप्त है, उनकी बराबरी अज्ञानी क्यों करते हैं? हे राजन, जो हंस है वे सदा अपनी महिमा में रहते हैं और अपना जो मोती का आहार है उसको करते हैं, दूसरे किसी पदार्थ का स्पर्श नहीं करते। जैसे चंद्रमुखी कमल चंद्रमा को देखकर शोभा पाता है, चंद्रमा बिना शोभा नहीं पाते। वैसे ही बुद्धि भी तब शोभा पाती है जब ज्ञान का उदय होता है। आत्मज्ञान के बिना बुद्धि शोभा नहीं पाती। बड़े बड़े सुगंध वाले वृक्षों का महात्म्य भौरे ही जानते हैं और जीव नहीं जानते। इतना कहे वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, समुद्र के किनारे पर राजा विपश्चित से मंत्रियों ने ऐसे कहकर फिर कहा कि हे राजन, अब पृथ्वी नगर के मंडलेश्वर स्थापित करो। हे रामचंद्र जी, जब मंत्री ने ऐसा कहा तब सब दिशाओं के मंडलेश्वर स्थापित किए गए। तब चारों राजा जो अपनी अपनी दिशा के समुद्र पर बैठे थे, उन्होंने अपने अपने मंत्री से कहा, हे साधु, अब हमने समुद्र पर्यंत दिग्विजय की है और हमारी जय हुई है। अब चैत्य जो दृश्य है, उस दृश्य विभूति को देखो। समुद्र के पार द्वीप है, फिर उस समुद्र के पार और द्वीप है, फिर समुद्र है और फिर द्वीप है। इसी प्रकार सात द्वीप और सात समुद्र हैं, पर उनके आगे क्या है? इस प्रकार सब दृश्य देखने की इच्छा करके उन्होंने अग्नि देवता का आवाहन किया। उनकी दृढ़ भावना से अग्नि देवता सम्मुख आकर स्थित हुए और बोले, हे राजन, जो कुछ तुमको कामना हो सो मांगो। राजा ने कहा, हे भगवन, ईश्वर की माया से पंच भौतिक दृश्य में जो प्राणी है उनको देखने की मेरी इच्छा है, उसे पूर्ण करो। हे देव, हम इसी शरीर से दृश्य देखने जावे और जब यह शरीर न चल सके तब मंत्र सत्ता से जावे, पर जहां मंत्र की भी गति नहीं वह सिद्धि से जावे, और जहां सिद्धि की भी गति नहीं वहां मन के वेग से जावे और मृतक भी न हो, यह वर हमको दो। हे राजन, जब इस प्रकार राजा ने कहा तब अग्नि ने कहा कि ऐसा ही होगा। यो कहकर अग्नि अंतर्धान हो गए। जैसे समुद्र से तरंग उठकर फिर लय हो जाती है, वैसे ही अग्नि अंतर्धान हो गए। जब राजा विपश्चित वर पाकर चलने को उद्यत हुआ, तब जितने मंत्री और मित्र थे वे रोने लगे और बोले, हे राजन, तुमने यह क्या निश्चय किया है? ईश्वर की माया का अंत किसी ने नहीं पाया, इससे तुम अपने स्थान को चलो। यह क्या तुमने निश्चय किया है? हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मंत्री कहते रहे, परंतु राजा ने उनको आज्ञा देकर एक दिशा के समुद्र में प्रवेश कर लिया। यो चारों दिशाओं में चारों राजाओं ने गमन किया। तब जो बड़े बड़े शक्तिशाली मंत्री थे वे साथ ही चले। तब राजा मंत्र शक्ति से समुद्र को नांग गया, कहीं पृथ्वी पर चला और कहीं ऊंचे चला, इसी प्रकार और द्वीप में जा निकला। तब बड़ा समुद्र आया, उसमें प्रवेश कर गया। उसमें बड़े तरंग उछलते थे, उसका 100 योजन विस्तार था, कभी नीचे और कभी ऊपर को जाते थे। हे राम, ऐसे तरंग उछलते मानो पर्वत उछलते हो। जब वे ऊपर को उछलते हैं तब स्वर्ग तक उछलने लगते हैं, और जब नीचे जाते तब पाताल पर्यंत चले जान पड़ते हैं। जैसे पानी में तृण फिरता है वैसे ही राजा फिरे। इस प्रकार कष्ट से रहित राजा समुद्र और दिशा को नांग गया। परंतु बीच में जो वृत्तांत हुआ सो तुम सुनो। क्षीर समुद्र में एक मच्छ रहता था, उसको सब देवता प्रणाम करते थे, और जो विष्णु भगवान के मच्छ अवतार के परिवार में था, जब राजा ने क्षीर समुद्र में प्रवेश किया तब राजा को उसने मुख में डाल लिया, पर राजा मंत्र के बल से उसके मुख से निकल गया। आगे फिर एक मच्छ मिला, उसने भी उसे मुख में डाल लिया, पर उससे भी वह निकल गया। फिर आगे पिशाचों का देश था, वहां राजा को पिशाच ने काम से मोहित किया। फिर उसने दक्ष प्रजापति की कुछ अवज्ञा की, जिससे उन्होंने शाप दिया और राजा वृक्ष हो गया। निदान कुछ काल वृक्ष रहकर फिर छूटा तो एक देश में मेंढक हुआ और 100 वर्षों तक खाई में पड़ा रहा। फिर उससे छूटकर मनुष्य हुआ, तब किसी सिद्ध के शाप से शिला हो गया और 100 वर्ष तक शिला ही रहा। उसके उपरांत अग्नि देवता ने शिला की योनि से उसे छुड़ाया तो फिर मनुष्य हुआ। तब उस सिद्ध को आश्चर्य हुआ कि मेरे शाप को दूर करके यह मनुष्य क्यों कर हुआ, यह तो मुझसे भी बड़ा सिद्ध है। ऐसे जानकर उसने उसके साथ मैत्री की। इसी प्रकार दूसरे समुद्रों को भी वह लांघता गया। क्षीर समुद्र, खारी समुद्र, इक्षु रस के समुद्र को लांघ कर द्वीपों को लांघता गया। फिर एक अप्सरा पर मोहित हुआ और बहुत काल में वहां से छूटा। फिर एक देश में पक्षी हुआ, बहुत काल तक पक्षी रहकर छूटा तो एक गोपी पिशाचनी ने बैल बनाकर उसे रखा। तब दूसरे विपश्चित ने बैल विपश्चित को उपदेश करके जगाया, निदान हे रामचंद्र जी, चारों दिशाओं में चारों विपश्चित घूमते फिरे। दक्षिण दिशा का राजा तो पिशाचिनी से मोहित हुआ, इससे उसने बहुत जन्म पाए, और पूर्व का राजा बहता हुआ मच्छ के मुख में चला गया, उसे उसने निकाल दिया, इससे उसको वह अवस्था देखी। उत्तर दिशा का जो राजा हुआ उसने वही अवस्था देखी। पश्चिम दिशा का हेमचू पक्षी की पीठ पर पहुंचा, उसने उसे कुश द्वीप में डाल दिया, इससे उसने भी अनेक अवस्था पाई। हे रामचंद्र जी, एक एक विपश्चित ने भिन्न भिन्न योनियों और अवस्थाओं का अनुभव किया।
हरि ओम, हरि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।